राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 9 नवंबर 1992 को साय लगभग 3 बजे वृंदावन में हुआ। राम
पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण 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 नारायण। दो तीन बात आई है। एक बात आ रही कि महाराज इसी से धर्मात्मा होते हुए जुआ क्यों खेले थे। शेर जी ने युधिष्ठिर की बातें उनकी जीवनी लिखते हुए उनकी प्रशंसा लिखते हुए कहा है कि जुआ खेलने की एक बुरी बुद्धि आदत थी उनकी, ये एक कलंक था। ये दिखा वो आदर्श नहीं है। आदमी के जीवन में कोई कोई कलंक होता है, कोई एक दोष होता है तो उससे बहुत खराबी होती है। तो अच्छे पुरुषों ने जुआ खेलने को दोष ही बताया है, महाराज विष्णु को आदर्श नहीं बताया। बहुत दुर्दशा हुई है तो इसको आदर्श नहीं बताया, ऐसी बात है। और स्त्री को जू पर लगाना उनका था नहीं, अभिष्ट नहीं था। जुए पर उन्होंने राज लगा दिया, लक्ष्मी लगा दी, सब वस्तुएं लगा दी, फिर अपने भाइयों को लगा दिया, अपने को भी लगा दिया। फिर के और क्या रहा, कुछ नहीं रहा। तो शकुनी था ना, वो बड़ा विचित्र दुष्ट था नामी। उसने कहा तुम्हारी स्त्री रह गई, तो स्त्री को जुआ पर लगाया। तो ये है एक होनहार कहे क्या कहे, बड़े आदमियों की बात क्या कहे बताओ। छोटे मुंह बड़ी बात है, मैं क्या कहूं। ये भूल हुई, बड़ी भारी भूल हुई युधिष्ठिर महाराज की खुद की, जिससे बोल नहीं सके। सभा में पूछा है, वो गाने को गया दूसरा सुन, पहले नौकर भेजा बुलाओ, उसने कहा मैं नहीं आऊंगी। उस समय द्रौपदी एक अवस्था थी, स्त्री धर्म में थी, एक साड़ी पहनने गली थी और कपड़ा नहीं था, एक वस्त्र। दूसरा सन्ना दुर्योधन का तुम लाओ, वो जाए हाथ पकड़ा है, केस पकड़े है, वो लाया जबरदस्ती से। ध्यान देकर सुना कि द्रौपदी ने एक प्रश्न किया है, सभा में आकर प्रश्न किया है कि राजा युधिष्ठिर महाराज अपने आप को हार गए, पीछे मेरे को लगाया है कि पहले लगाया है, मैं हारी गई कि नहीं हारी गई इसका प्रमाण दो। बड़े जोर से कहा है भीष्म द्रोणादि से, कोई नहीं बोले। दुर्योधन का भाई था विकर्ण, वो बोला कि मेरी समझ से द्रौपदी नहीं हारी गई है। कर्ण ने उसको पहले छुरा, तू क्या करता, बड़े बूढ़े बूढ़े बैठे क्या बोलता है, बैठा दे। द्रौपदी ने ये पूछा था। पूछने का क्या तात्पर्य था? तो वो भाई द्रौपदी जाने, पर तो हमारे मन में ऐसा आता है कि वो देखती है अन्याय से मेरे पर कोई हाथ धारे, कोई पकड़े, तो मैं ठीक देख लू। बड़ नामी पति प्रसाद थी, गांधारी ने आकर धृतराष्ट्र से कहा है कि आप जल्दी राजी करो, पति बताओ तेज को आप जानते नहीं हो, एक बस में भस्म कर देगी सबको, इसको जल्दी राजी करो। तो उसने जल्दी राजी किया, फिर दोबारा गया, फिर पाल कसा हुई। पूछने का तात्पर्य था कि जब पांचों पांडवों को हार गए, राजा आप हार गए, वे सब दास बन गए, और द्रौपदी महारानी है, तो दास को महारानी को दाव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उसमें भी वे नहीं है, द्रौपदी के मालिक नहीं है, वे दास है सब। दास महारानी को दाव पर लगावे, द्रौपदी के पूछने का ही तात्पर्य है। वो अधिकारी नहीं है, जिसमें कोई स्त्री दाव पर लगाने की चीज होती है क्या? स्त्री तो आदरणीय होती है, माता का दर्जा सबसे ऊंचा माना गया है, स्त्री का भी दर्जा ऊंचा है, बने स्त्री का दर्जा ऊंचा नहीं, माता का दर्जा है। हमारी ये बहनों माता बनना बंद कर रही है, हमें बड़ा दुख होता है, बने रोवे क्या, मानती नहीं, तो बड़ा जोर से प्रसार करता है, माँ बनना बंद करती है। एक बहन ने तो सुनाया कि बीकानेर अस्पताल में ज्यादा तुम्हारे सत्संगी सत्संगी बहन जाती है और ऑपरेशन कराती है। अब क्या कहे बताओ, किसका गरीब हुआ है? स्त्री का दर्जा ऊंचा नहीं, ऊंचा माँ का दर्जा है। पिता से 100 गुना, कहीं 10 गुना, कहीं 100 गुना, पिता से अधिक मान नहीं आए। माता कौशल्या ने कहा है, तुम्हारे पिता ने अगर वन में जाने का कह दिया है तो जल जाओ जान बड़ी माता, मेरा दर्जा ऊंचा। मैं कहता हूँ, कहती हूँ कि तुम बदमाश बच जाओ, तो दोनों की बातों की मेरी बात माननी होगी, जान बड़ी माता। जो पितु मात का उभर जाना जन्म कैसे, तो खाना सतावध समाना, तुम्हारे पिता से 100 गुना मेरा अधिकार और मेरे से 100 गुना तुम्हारी दूसरी माँ का अधिकार, ये न्याय है, इतना अधिकार होता है। कन्याओं को गर्भ गिरा देते हैं, मैंने लिखा है कि मातृशक्ति का घोर अपमान है ये। महिला संघ बना है, महिलाएं बड़ी तरपती है, सती पसार, ये पसार क्या क्या अलग अलग बातें बकती है, और इधर बच्ची गर्भ में हो तो गर्भ गिराए दो, मातृशक्ति का महान अपमान है। वो छोटी बच्ची मातृशक्ति है, वो माँ बनने वाली है, मातृशक्ति है, मातृशक्ति का इतना अपमान, इतना संस्कार करना। परंतु हमारे ये भाई आप बहन अपमान से नहीं, क्या करूं, कहां रहूं मैं, किसी का करी कहूं, बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हैं। तो उसमें कोई नहीं बोल रहा है, सब चुप हो गए। दुशासन ने केस भेजे और उसको गिरा दिए, जैसे मरे हुए कुत्ते को घसीटे, ऐसे सभा के बीच में केस पतिक पकड़ के घसीटी है। महान अपमान किया द्रौपदी का, पर द्रौपदी की बात क्या कहे, वो इतनी पूजनीय आदरणीय थी, इतने पर भी क्रोध नहीं किया, श्राप नहीं दिया, बड़ा धैर्य, विलक्षण धैर्य उसका, किसी को वहां श्राप नहीं दिया। दुष्ट करने में कमी नहीं रखी, जैसे धार करके उठा कर रह गया, पर द्रौपदी ने कुछ नहीं कहा, एक शब्द कह दे तो और सब भस्म हो जाए, ये महान ताकत थी उसमें, परंतु बोली नहीं, बड़ी सहिष्णुता थी। तो युधिष्ठिर महाराज की भूल मानी गई है, क्यों कि जब दास है उसको महारानी को दाव पर लगाने का अधिकार नहीं है, और ये बात याद नहीं रही, और फिर पता लगा तो युधिष्ठिर क्या बोले, अगर क्या नहीं आ रही गई तो तुम राम कर क्यों लगाया, राम रंग लगाया तो तुम हारे गए, तो युधिष्ठिर क्या बोले, कुछ नहीं बोले, हारी गई कि नहीं हारी गई कुछ नहीं बोले, चुप रहेगी, भूल हो गई, ये बड़ी भारी भूल हुई है, मामूली नहीं है, होनहार कह दो कुछ भी कह दो, इसका नाम होनहार ऐसे ही है। हो सब हो तो बड़ो बलि ताको अटल विचार, किन मानी मानी नहीं होनहार से हार, ये बात नारायण 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 नारायण। दूसरा मेरे पास पूजा आया है, सुनने वाला कोई नहीं, किसको सुनाऊं, ध्यान नहीं देते लोग, मेरे हृदय की जलन है, मैं कहां रोऊं, ये हमारी बहना कभी स्वामी रोटी दे रहे, मेरी कभी भिक्षा दे रहे, ये तो नालायक होती है, लालायक मन तरस दी है कभी दे रहे और कहना मानते नहीं, लोग मैं बैठूंगा धूल देते हैं, यूं यूं करते हैं, धूल पड़ेगी वो कर्म में उनको फायदा नहीं है, पर तो बात नहीं मानते, कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। शास्त्र में अब थोड़ी सी बात बताता हूं, थोड़ा तो समय है, थोड़े आदमी है, सुनने वाले है नहीं, अन्याय करने वाले सुनते नहीं, सुनने वाले अन्याय करते नहीं, इनमें अन्याय करती है कुछ कुछ, पर वे भी बचती है, मेरी बातें सुनने पर बहनों को दुख हुआ है, मेरी भिक्षा नहीं लेते, मैं जिसने घर पास किया है उस घर की भिक्षा मैं नहीं लूंगा, मेरे को भिक्षा मत देना, बुद्धि मेरी भ्रष्ट हो जाएगी, मना महान पाप करती है, बड़ा भारी पाप करती है, इस बहनों को दुख हुआ है, मेरे सामने आग रोने लग गई, इतनी दुख हुआ है उनको कि कैसे आप भिक्षा ले लो, मैं कैसे ले लू भिक्षा भरी, ऐसे घोर पाप करे उस घर का अन्न कैसे खाया जाए, ऐसी बात हुई है, मैंने कुछ बातें बताई है, फिर ज्यादा दुख होने मैंने भिक्षा ली है, एक घर के लिए मुझे याद है, तो ऐसी बात है, लेकिन हम जानते नहीं, घनी भी बहना बेचारी भोली भाली है, सीधी उकसावे और बालक बालक पालना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, मैंने सभा में सुनाई है, हमारी कई बहना तैयार हो गई है कि जिनके गर्भ है और गर्भ पेट में बच्चा है, उनके ऐसा विचार है कि हम नहीं हुए तो तुम बच्चा जन्मे दो, एक भाई ने कहा कि हजार का एक है, एक हजार बाल तुम्हें पाल लूंगा, और बहनों माताओं ने कहा है एक मेरे को दे देना, एक मेरे को बच्चा दे देना, कोई स्त्री पढ़े तो हम पालेंगे, स्त्रियों ने कहा है मेरे से, मेरे पर दया रखने वाली बहनों ने ऐसी बात कही है कि हम पाल लेंगे, तुम गर्भ गिराते क्यों, और तुम मानते ही नहीं। जोधपुर में कुछ ऐसा प्रबंध हुआ है, 10-12 बालक आए ऐसा बताया सुना है मैंने,
40 बालकों को आदान प्रदान
हो गया, दो साल में 40 बच्चे को बचाए हैं, मेरी बात मानते भी है, मैं एक दुख के साथ कहता हूं, दुख दो तरह का होता है, एक व्यक्तिगत दुख होता है, एक दयागत दुख होता है, तो व्यक्तिगत मेरा कुछ नहीं जाता, क्या बिगड़ता है, मेरा क्या नुकसान हो जाएगा, मैं जीवन जी तो भिक्षा देने वाले लोग आए तो बचेगी, कितनी नष्ट हो जाएगी ना, तो मैं जितने जीता हूँ इतने दिन भिक्षा मिलने वाली स्त्री रह जाएगी ना, मेरी कीमत थोड़ी चिंता है, मैं इतनी देर मरेगी नहीं, इतना तो अभाव होगा ही नहीं, तो भिक्षा देने वाला कोई नहीं रहे, कितना दिन जीना है, ज्यादा तो जी गए, अब जितनी उम्र आई इतनी उम्र तो और आने वाली है नहीं, तो इस वास्ते मेरे से कोई बाधा नहीं है, तो महान दुर्दशा हो गई, महान दुर्दशा, बड़ा भारी पाप है और संसार बड़ा भारी नुकसान है, हिंदू जाति का सत्यानाश हो रहा है, 40-50 करोड़ संख्या घट गई है हिंदुओं की और मुसलमानों की बढ़ गई है, 60-60 बच्चे एक एक के मुसलमान के, 20-25 गयों के 100-100 तक मैंने सुना है। 60 वाले के तो तीन तो स्त्री है, चौथा ब्याह करने वाला है। अरे हिंदू दूसरा ब्याह कर नहीं सकता, राजस्व कानून बंधा हुआ है और राज की आदमी ऐसा कर रहे हैं। अरे मुसलमान इनको मुसलमान बना रहे हैं, ईसाई इनको ईसाई बना रहे हैं और इन वंश का नाश कर रहे हैं, इतने बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्या बताऊं मैं, मेरे से कोई बात पूछता है ना तो उभरती है भीतर में आते हैं। एक भाई किसी ने पूछा है कि हमारे रुपया बढ़ता है तो हम अच्छे मकान बनाते हैं, अच्छी गाड़ी रखते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं और चीजें लाते हैं, यह नाशवान ज्ञान का उपयोग है या गलत है? महत्व अच्छे कामों में बहुत कम खर्च होता है क्योंकि उन चीजों में बहुत खर्च हो जाता है। इसमें मेरी बातें बहुत आई मन में, थोड़ी सी आपको नमन की बात बताता हूँ, समय हमारे पास थोड़ा। देखो सबसे ऊंची बात है परमात्मा की, भक्ति की, प्रेम की, भगवान की, स्नेह की। दूसरी बात है तत्व ज्ञान की, अपना बोध हो जाए, अपना ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, कल्याण हो जाए। एक नंबर भगवान की भक्ति की बात, दूसरी तत्व ज्ञान की बात। ये बहुत बढ़िया ऊंच दर्जे की बात है। इससे नीचे उतरते हैं तो विवेक की प्रशंसा, विवेक सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, कर्तव्य अकर्तव्य, ध्येय उपाधेय, ये दोनों का जो विवेक, नित्य अनित्य का, सत असत का, ये विवेक है, इसका दर्जा ऊंचा है। विवेक से भी ज्ञान और भक्ति ऊंची है। विवेक ज्ञान साधन है, वो साध्य है, ये प्राप्त करना वो प्रापणीय है। जैसे सीढ़ी होती है चढ़ने की, एक ऊपर का छात होता है, ऊपर का छात है वो तो वास्ते वो तत्व है, ऐसे सीढ़ी वो चढ़ने के लिए साधन है। ऐसे विवेक साधन सबसे बढ़िया है। परंतु मैं कहता हूँ जिसमें लोग ध्यान कम देते हैं, 2 वर्ष हुए मैंने विवेक की बात ज्यादा कही थी, कर्ण निरपेक्ष कर्ण सापेक्ष साधन, जिसमें लोग कहते हैं स्वामी जी एक ही पीछे पड़े कर्ण निरपेक्ष। नहीं, भाव तो समझने नहीं, निंदा करते स्वामी जी कुछ भूत सवार हो गया ऐसे ही ऐसी बात करते। तो कर्ण की आवश्यकता नहीं है इतनी जितनी तत्व की जरूरत है, विवेक की जितनी आवश्यकता है। तो विवेक प्रधान साधन होता है, एक साधन क्रिया प्रधान होता है, जप करना, कीर्तन करना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, क्षमा करना। मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैं बहुत बढ़िया मानता हूँ, परंतु विचार करके देखा जाए सार असार, 2 तरह की शास्त्रों में बातें हैं, एक महात्म्य बातें हैं और एक विचार विवेक की बातें हैं। विवेक की बातें जहाँ चलती है वहाँ क्रिया की इतनी प्रधानता नहीं है। नाम जप से विवेक पैदा हो जाता है, इस वास्ते नाम की बड़ी महिमा है, परंतु वो तत्परता से नाम रातन दे लिया तब है, उतना नाम तो करते नहीं। नाम जो के नाम पर विवेक की तरफ ख्याल नहीं करते हैं, पर के भगत पर निंदा कर देते हैं कि ज्ञान कुछ नहीं है, वो ये बात करते हैं, ये सांप्रदायिकता है। तो उनकी मैं निंदा नहीं करता हूँ, मेरा निंदा करने का आशय नहीं है, मेरा भाव नहीं है, मेरा आदर भाव है संप्रदायों पर भी, परंतु केवल क्रिया में ही लोग लगा रहे, क्रिया में लगा रहे। भोजन करा दिया ब्राह्मणों को, भोजन कर दिया साधुओं को, सत्कार कर दिया, भोजन करा दिया उनको, भेंट पर पूजा कर दी उनको, दे दिया। ये चीजें बहुत स्थूल है, इससे जीव का उद्धार हो जाए, सुख मिलेगा ये निष्फल नहीं जाएगी, फायदा होगा, और निष्काम भाव से करो तो तत्व ज्ञान होगा, उसे मदद होगी परमात्मा की भक्ति में, इनसे मदद होगी, फायदे की बात है। परंतु क्रिया ही क्रिया में राहत देने लगे रहते हैं, विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते। विवेक क्या है कि भक्ति और ज्ञान ये प्रापणीय तत्व है और विवेक ये उसका साधन है। तो विवेक प्रधान साधनों की तरफ ध्यान नहीं है, क्रिया प्रधान की तरफ साधन। मैं जहां कहीं देखता हूँ प्रधान क्रिया की है, पदार्थ और क्रिया ये है प्रकृति का कार्य। स्थूल बहुत नीचा, ये रुपया पैसा आदि बहुत नीचा है, क्रिया पदार्थ है बस ऊंचा है। तो उनमें विवेक की प्रधानता, विवेक से दीजा नीचे उतरते हैं तो प्रधानता है हवा की। ख्याल करना, वायु है ना, ये वायु ये जितना कीमती है इतने पदार्थ कीमती नहीं है। पर ये बात जल्दी समझते नहीं आदमी। मैं पूछता हूँ सीधी समझने में सीधी बात, आपको पदार्थ सब मिल जाए पर श्वास लेने को वायु न मिले तो क्या दशा होगी? किसी के तर को तो पूछो मेरे को, मेरी बात को काटो। जब से आवश्यकता हवा की है, श्वास की, तब जीते हो आप। कल श्वास में जी जाओगे? उससे दो नंबर की जरूरत है जल की, उससे तीन नंबर की जरूरत है अन्न की, उससे चार नंबर आवश्यकता है कपड़े की, उससे पांच नंबर की आवश्यकता है मकान की। ध्यान जाने इस बात को, किसी का अगर रूम होता कोई ध्यान देता ही नहीं है। ध्यान दो और मेरी बात को काटो, मैं राजी होऊंगा कि आप समझते हो बातों को, इस बात से मेरे को प्रसन्नता होगी। मेरी बात का खंडन करो, कल कर देना, आज सुन लो थोड़ी सी, समय थोड़ा है, अभी मन में भभका आया हुआ जो सुन लो, मेरी भाप निकाल लो। मकान आदि की, इसके बाद में महाराज पढ़ाई आदि की, खेतों की, जमीन की, इसकी आवश्यकता है। इससे अगर इस तरह जाए तो एक दूसरी और बड़ी बढ़िया बात है, ये जीव जंतु जो स्थावर है उसकी अपेक्षा आवश्यकता है जंगम जंतुओं की। और जंगम जंतुओं में आवश्यकता है गाय की। गाय के समान कोई नहीं है। आज गाय काटी जाती है केवल पैसों के लोभ से। हजार रुपयों की गाय है उसका 10,000 रुपया 15,000 रुपया बढ़ता है टुकड़ा टुकड़ा करने से, उस लोभ के कारण से गाय मारी जा रही है। बसरा बसरी का मांस 250 रुपया किलो 200 रुपया किलो इस बात में वहां मुसलमान देश में बिकता है। गाय का 100 रुपया किलो 90 रुपया किलो इतना, और बसरा बसरी का मांस उससे वर्ष नष्ट हो जाएगा। और वो लोभ में लगे हैं लोग, सरकार भी क्या कहे सरकार को, क्या कहे इनको सरकार ठहरी। पर वो है कलयुग में ये भूप प्रजासन, राजा राजा लोग हो गए, प्रजा वो खाने वाले होंगे, प्रजा वो खाने वाले। ये गोस्वामी महाराज रामायण में लिखा है, मैं नहीं कहता हूँ, वो कहते हैं, कहत कबीर मैं कहता डरूं और गौर कह जिसका मैं क्या करूं। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं प्रजा को खा जाएंगे, प्रजा को तो गाय है उनको मारते हैं और उनसे रुपया लेते हैं। आंदोलन हुआ, आंदोलन में कहते हैं इसमें लोभ से गायों को मत मारो, तो सरकार के खास खास आदमी हिंदू, हिंदुओं में धनी चौके धर्मात्मा कह लेने वाले, उनका हाथ है गायों के मांस की बिक्री में, गायों की बिक्री में, क्योंकि उनसे धन पैदा होता है। पैसे के लिए इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो वे जंतु श्रेष्ठ है, जंतुओं में गाय सर्वश्रेष्ठ है, गाय से श्रेष्ठ है मनुष्य, उनको गर्भ से गिराया जाता है, जन्म नहीं देते हैं, उससे ज्यादा श्रेष्ठ ये मनुष्य है, भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य हो नहीं जो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। उन मनुष्यों में श्रेष्ठ है विवेकवान, जिनके विवेक है सत असत का, नित्य अनित्य का, उनका कितना महत्व है समझ नहीं सकते। वो उसके सामने कोई चीज इतनी महत्व की नहीं है। पैसों को देने लगा महत्व, सबसे नीचे दर्जे की पैसा है। ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी, मैं ताकत भी नहीं रखता कि समझा दूं, परंतु मैं कहता हूं सच्चे हृदय से, वृंदावन में भगवान के धाम में कहता हूं, झूठ कपट से नहीं कहता हूं, निंदा की दृष्टि से नहीं कहता हूं, सबसे निकृष्ट है तो पैसा है। रुपया पैसा जितना निकृष्ट है, इतना सोना चांदी निकृष्ट नहीं है। सोना चांदी से भी श्रेष्ठ जमीन, वो जमीन बेच बेच करके दे रहे हैं, वोट ले रहे हैं मुसलमानों को, जमीन दे करके बाजार का बाजार बिक्री कर दिया, मुसलमानों को दुकान दे दी, एयरपोर्ट ले दिया। कितना दिन चलेगा? चार पांच वर्ष, दो बार आ जाए तो 10 वर्ष। सदा के लिए संपत्ति नष्ट कर दी, ऐसे ऐसी अनर्थ हो रहा है। रुपयों के बदले में रुपया सबसे निकृष्ट, सबसे नीची चीज है, निकृष्ट चीज है तो पैसा है। वो पैसे का आदर बढ़ गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अब समझा नहीं सकता कोई भी, समझा नहीं सकता। कहते बुद्धि पैसा नीचे कैसे है? आप ध्यान दो, मेरे को आप अन्न जल वस्त्र और सोने के बैठने की जगह दे दो, पैसा एक मत दिखाओ, सोना चांदी मोहर आदि मत दिखाओ, रत्न का दर्शन मत कराओ, मैं जी जाऊंगा। सोना चांदी का ढेर लगा दो, बड़ा भारी चबूतरा बना दो, उसको बैठा दो, अंदर जल बंद कर दो, कितना जीवेगा, कितना दिन वो जीवेगा? बढ़िया चीज क्या है? आप ध्यान दें कृपानाथ, थोड़ा का ख्याल करें। बढ़िया चीज अन्न जल वस्त्र है कि जिससे जीता मनुष्य जी रहता है। रुपया जीने में काम नहीं आता, रुपया वस्तुओं के द्वारा काम आता है। स्वयं ना पान खाने में काम आता, ना पहनने में काम आता, ना पीने में काम आता, ना सवारी में काम आता, ना बीमार हो पैसा खुद काम नहीं आता, खुद पैसा काम नहीं आता है। आता तो बोलो भाई इतने बैठे बताओ, मैं मेरी बात छोड़ दूंगा। दवाई दवाई के द्वारा, जल के द्वारा, अन्न के द्वारा, वस्त्र के द्वारा, मकान के द्वारा पैसा काम आता है। मेरी बात समझे कि नहीं सो, मेरे संदेह है। मेरी बात आप समझते हो कि नहीं समझते हो? मैं लाचार हूं, करूं क्या? सबसे निकृष्ट पैसा है, भिष्ठा काम आती है, सूर खाता है, पेशाब काम आता है, कई रोग मिटते हैं टट्टी पेशाब से, और मैला खा करके सूर जीते हैं। मैला उसे बहुत कीमती है पैसों से, पैसा बहुत कीमती है पैसों से, रेत है, कंकर पत्थर है, ये काम के है। मकान बनाते हैं तो भर्ती करने के लिए काम आती है, हाथ धोने के लिए मिट्टी काम आती है, बर्तन साफ करने के लिए मिट्टी रेता काम आता है, पैसा काम नहीं आता है। ये बात समझ में आनी मुश्किल है मेरे को, तो बिल्कुल साफ दिखता है। क्षमा करेंगे आप लोग, मैं निंदा नहीं करता हूं, मैं वास्तविक चीज आपको जानना चाहता हूं कि आप वास्तविक चीज को समझें, जानें, इधर ध्यान दें। कोई काम नहीं आता पैसा, खुद क्या काम आता है बताइए? बिछाने का काम आता है, ओढ़ने में काम आता है, खाने में काम आता है, क्या किस काम आता है रुपया? रुपया वस्तुओं के द्वारा काम आता है। तीसरी पीढ़ी में है रुपया। मेरे को तो क्यों ने कहा कि महाराज गुरु बनावे, तो मेरी करली बात है, बहुत करली। वो गुरु बनने लायक है क्या? वो पोता चेला है आपका, क्या करूं, कहां कहूं? कोई सुनने वाला नहीं, कोई ख्याल करने वाला नहीं है। उस रुपयों को इतना बड़ा भारी महत्व दे दिया। मैंने बात ये कही है जिसमें एक पैसे वाले साधु थे, वो हैं अभी, उन्होंने कहा कि स्वामी जी रुपये के दिन हमारे से नहीं सुन जाती, बंद करो मेरे से नहीं सुन जाती। बोलो, मैं निंदा करता हूं, सुने नहीं जा रहे, सुन नहीं सकते, सुन नहीं सकते। मेरी बात कड़वी लगती है, परंतु असत्य हो तो मेरे को आज बताओ, कल बता देना, मैं मानने को तैयार हूं, क्योंकि मैं अपनी उन्नति चाहता हूं। मैं अपना कल्याण चाहता हूँ, श्रेष्ठ बात कोई बताए तो मैं धारण करना चाहता हूँ, मेरे को इसमें शरण नहीं आती है। मेरा कल्याण हो जाए तो मेरे को शरण नहीं आती। गृहस्थी गृहस्थी किसी वर्ण का हो, गृहस्थी हो तो उसमें महाभारत का प्रमाण भी है, मेरी धारणा है, उन्हें चेला बन सकता हूँ, मैं उनको गुरु बना सकता हूँ, उसकी आज्ञा पालन कर सकता हूँ, हुक्म में चल सकता हूँ, तत्व ज्ञान हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो मैं निकृष्ट नहीं मानता हूँ। परंतु तो पैसों से क्या हो जाएगा? मैं ऐसी बात कहता हूँ तो पैसे वाले सज्जन कहते हैं कि स्वामी जी पैसों का तत्व जानते नहीं। मैं चुप हो जाता हूँ, पर कभी कभी भबका आज है जो आ जाता है तो मैं कहता हूँ, बात सभा में कह देता हूँ, आप समझते हो पैसों का महत्व। मैं पैसों का महत्व जानता हूँ, पैसों के त्याग का महत्व भी जानता हूँ। आप पैसों का जानते, त्याग का महत्व आप नहीं जानते, आपसे दूरा समझता हूँ मैं। आप समझते हो पैसों का महत्व स्वामी जी नहीं जानते। मैंने पैसे रखे हैं, कथाएं की है, भेंट ली है, पूजा करवाई है, ये मेरे किया हुआ काम है। सप्ताहें की है, भेंट पूजा ली है, कथाएं की है, भेंट पूजा ली है, मैं जानता हूँ पैसों को भी, परंतु उसमें इतना आनंद नहीं है। मैं कथा की है, गाना बजाना किया है, जागरण किए, रात में अकेले अकेले पेटी बजाकर जागरण किए हैं, ये उपदेश आदेश करना मैं जानता हूँ, व्याख्या देना जानता हूँ, गाना बजाना तो कोई 60 वर्ष हो गए, 50-60 वर्ष तो ऐसे हाथ नहीं चलता है अभी, परंतु अभी भी गाने बजाने में बड़े निपुण हुए के परीक्षा दी है, उनको मैंने पूछा है गाने में कि रूप की तार क्या होते हैं, बोल कैसे होते हैं, कितनी मात्रा है, जवाब नहीं दे सके। जिन्होंने सर्टिफिकेट लिया है गाने बजाने में, उनमें मैं पूछता हूँ, आप में होता आपको ही पूछ लू मैं, भक्त पर आप दो जवाब। मैं बातें सीखी हुई है, देखी हुई है, तबला बजाया हुआ है, ढोल बजाई हुई है, पेटी बजाई हुई है, ये जानता हूँ। सितार की मन में थी वो सीखा नहीं मैंने, बल में थी कि मैं सितार भी सीखूं, कई चीज सीख जाऊं, सीखने की शौक थी, हर एक बात सीखने की शौक है, मेरे शौक है, उसमें कई चीजों में शौक है। अभी मैं जानता हूँ तो मेरे को भूतवातें दिखती है, ये बुने हुए कपड़े, गूंथे हुए कपड़े देखता हूँ, इनमें मेरे को भूलें दिखती है। इनको साथों को मैंने कहा है, देखो यहाँ जो ये जिस घर में ठहरे थे सुजानगढ़ में, उस घर में पत्थर जड़े हुए थे, पत्थर मार्बल के, उन पत्थर जड़ी जड़ने में ये भूल कर, यहाँ भूल है, यहाँ भूल है, पत्थर जड़ने में भूल है, मेरे को दिखती है साफ साफ, तेरे आपको भी माननी पड़ेगी। गूंथे हुए मकान वस्त्र दरिया और बिछाने रही, उनमें कसीदे करने पड़ा, उसको बताता हूँ भूल रहे, आज भी मैं देखता नहीं हूँ, मेरे को भक्त कहाँ है इसने, मैं दृष्टि पड़ते ही पता लगता है ये गलती हुई, यहाँ से गलती है, ये गलती है, इस तरह से मैं बातों को जानता हूँ। पर अब किसको कहूँ, और कितना अनर्थ हो रहा है, कितना महान पतन हो रहा है, कितना पाप हो रहा है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। साधन के ऊपर, साधन के ऊपर लगे होने भाई बहनों के द्वारा कितना अन्याय हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, सबसे निकृष्ट पैसे के समान निकृष्ट वस्तु नहीं है। सूर नहीं खाता, गधा नहीं खाता, कुत्ता नहीं खाता, मनुष्य नहीं खाता, कोई काम खाने में आता ही नहीं, वस्तु के जरिए काम आता है, स्वयं पर पैसा, इसमें अगर देखो तो पैसों की महिमा नहीं है, पैसों के खर्च की महिमा है। पैसा खर्च करने से पैसे वाले को भी हवाई जहाज का खर्च करना पड़ेगा, सवारी में खर्च करना पड़ेगा, खाने पीने के खर्च करना पड़ेगा, पैसा काम नहीं आता, पैसा का खर्च काम आता है। पर बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है, खर्च नहीं करते, भक्त पर सवारी नहीं चढ़ सकते कि पैसा लग जाएगा, पैदल चले जाएगा, क्या है, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जमीन बेच दी, घरों की जमीन बेच दी, अब लोगों किसी अगारी स्मशानों की जमीन हमारी है, जहाँ पर हम दाह क्रिया करते हैं अपने बड़ों की है, वो जमीन में पैसा मिला है बेच दी। मैं जानता हूँ ऐसी बातों, अब मैं इस घर की जमीन बेच दी कि पैसा मिलता है, और पैसे के बदले में अब क्या कहूं, अपने घर की बात करते शर्म आती है। गीता प्रेस की जमीन पैसों के लिए बेच दी, क्या कहूंगा, फिर बेचने को तैयार थे, मीटिंग में पास हो गया बेच दिए। मैंने कहा नहीं नहीं बेचने देगा, मेरी बात मान ली, बेचना क्या, बेचने का अधिकार तो मेरे को दिया है, अब नहीं बेचना, नहीं बिल्कुल नहीं बेचनी है। सोना चांदी से बढ़कर जमीन है, उस जमीन को बेच रहे हैं। पैसा आ जाएगा, पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा है, छोड़कर मर जाओगे, मकान काम आवेगा, जमीन काम आवेगी, पैसा तो लूट जाएगा, क्या कुछ चोर ले जाएगा, डाकू ले जाएगा, क्या वैद्य ले जाएंगे, क्या डॉक्टर ले जाएंगे, क्या वकील ले जाएंगे, क्या घूस में जाएगा, पैसों में ये चीज होती है, बताओ इसमें झूठ है तो। पैसे से क्या क्या आदर्श होते हैं, कितने कितने आदर्श होते हैं पैसों से, उन पैसों में वो है, उन पैसों के बदौलत गाय मर रही है जोर से आजकल, बड़ी भारी हत्या हो रही गाय, कोई 6 गुना 7 गुना हो गई होगा स्वराज्य होने के बाद इतनी हत्या हो रही है। मैंने कहा है, मेरे को सुनाया भैया ने किस तरह से रुक गए, मैं कह ये बात जानते है कि नहीं, पैसे अखबारों देकर खर्ब करो, कैसे इस तरह से पैसों का नहीं, गायों का नाश कर रहे हो, इतनी कीमत तुम्हारी गाय है, उसके पालन किया कोई प्रबंध किया है, मछली पालते हैं, अंडा पालते हैं, भेड़ पालते हैं, पर गायों को पालते नहीं है, गायों की कीमत बहुत ज्यादा है, मार मार काट कर बेच जिसमें हजारों रुपयों का धंधा हो रहा है, पर ये नहीं सोचते ये खत्म हो जाएगी, पालते नहीं हो तो क्या बेचोगे, थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगी, अंडा काम आता जी पालने के मकान मालूम बन गए हैं, भेड़ो पालने वाले को रुपया लाखों खर्च कर रहे हैं, कैसी ऊन होती है ऐसे पैदा होती है, अरे रुपये पैदा होते हैं गायों से रुपया पैदा कर, और हिंदुओं के सत्यानाश करने के लिए ऑपरेशन करते हैं, लूप लगाते हैं, नसबंदी करते हैं, गर्भपात करते हैं, रुपया लगता है हिंदुओं की गायों का, गायों को मार करके पैसा लेकर पैसा लगे हिंदुओं नाश के लिए, तेरी जूती और तेरे ही सिर, ये दशा हो रही है, पर भाई लोग समझते ही नहीं, सोचते ही नहीं, किस तरह पैसे खर्च कर रहे हो, पैसों से लाओ तो फर्नीचर ले आओ, तो मकान बना लो, ये बना लो, ये बना लो, गाड़ी रख लो, शहरों में गाय रखने में सरकार से बंद है कि इससे गंदगी बहुत फैलती है, कुत्ता रखो, कुत्ताओं में गंदगी नहीं होती, कुत्ता रहते हैं घर में, कुत्ते रहते हैं, कुत्ते का पालन करते हैं, कुत्तों को साफ रखते हैं, जिनके स्पर्श करके कपड़ों से स्नान करना चाहिए, ये स्मृति हमें लिखा है, उन कुत्तों को पास में रखते हैं, रसोई घर में रखते हैं, शयन घर में रखते हैं, पालते हैं, बड़ा आदर करते हैं, मनुष्य को बहुत कम, एक कुत्ता सनान जी कहते थे, उनके लिखा हुआ पुस्तक में है कि हम कश्मीर गए थे, उनके 20 बजे सम्मत में हम गए थे वहां, तो उसमें एक कुत्ता पाला हुआ था, वो साबुन से नहाया जाता था, और उस जमाने में 8 आने की मलाई खाता था वो, और कुत्ते पास में रखती थी, और मोटर में बैठ करके बगीचे में घूमने के लिए जाता था, कितने हिंदुओं को इतना आराम मिलता है, इतना कुत्ते में क्यों मिलेगा, जिस आराम के लिए आप पैसे खर्च करते हो, आपसे बढ़ करके कुत्ते को मिलता है, वो तो भाग में मिल जाएगा, मन मुक्ति कहाँ हो जाएगी, कल्याण कहाँ हो जाएगा, इतना कुत्ते का आदर होता था उसका, उनकी लिखी हुई पुस्तक में है, मैंने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, ये कुत्तों का ढाल। कलकत्ते में एक कुत्ता, तीन कमरे में पाता, विचार ऊपर गली सा है। उसमें बैठो, तीनों पर तीन पंखा चल रहे हैं, कुत्ता कभी इसमें बैठो, कभी उसमें बैठो, कभी उसमें बैठो, इस तरह से कुत्तों के लिए वो मैं जानता हूँ, और भावनाओं का मैं जानता हूँ, उन सदनों को मैं जानता हूँ, मेरे परिचित है वो, तो स्वर्णा जी की ही बात कहता हूँ। फिर वहां कलकत्ते से बम्बई भेजा गया, तो फेट गाड़ी नई खरीद करके उस फेट के द्वारा भेजा गया बम्बई। ऐसा मनुष्य नहीं मिलती, कुत्तों को मिल जाएगी, भाग मिली तो ये तो मिल जाएगी, पर परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, ये दशा है। क्या उनकी भ्रष्ट हुई है बुद्धि, गायों को मार मार करके पैसा देना, पैसों मार कर हिंदुओं को मारना, ये वंश खत्म हो जाए, ये संस्कृति खत्म हो जाए, क्या दशा होगी। मैंने ऐसा कहा तो मेरे को साधुओं ने समझाया है कि क्या करते हो, अपने साधुओं काम थोड़ा ही है, संतान की आधी बात तो गृहस्थ करो। मैंने कहा गृहस्थी साधु आएंगे कहाँ से, ऊपर से बरसेंगे, इनमें से निकलेंगे, ये वंश नष्ट हो जाए, साधु कैसे होंगे, और ये हिंदू ही नहीं रहेंगे तो हमारी पुस्तक कौन पढ़ेगा, कितना ऊंचा साहित्य आपका हिंदुओं का, संस्कृत का कितना ऊंचा साहित्य है, आज उसके पढ़े लिखे आदमी बहुत कम रह गए हैं, उसकी तो कोई विचार ही नहीं है कि हिंदुओं का नाश हो रहा है, कौन पढ़ेगा, कौन सुनेगा आपको, साधुओं की बात है, साधुओं की बात सुनेगा कौन, साधु बनेगा कौन, सुनेगा कौन, साधुओं के माँ बाप तो यही है, और है कोई, आप बताओ सा, कोई बता दो साधु, उठ बताओ, ये माँ बाप ही नहीं रहेगा साधु कहाँ जन्मेंगे, बताओ कहाँ से आएगा साधु, जन्म देंगे आप जन्म नहीं दोगे। और पहले संतान हम दो, हमारे दो, जयपुर में एक संतान एक नहीं तो ज्यादा ज्यादा दो, हम दो हमारे दो, मरेंगे वो खत्म होंगे, सौ वर्षों के भीतर भीतर हिंदू कौम नष्ट हो जाए, ऐसा उद्देश्य ऐसा ध्येय है, ये शक्ति कहां तक इसका पता नहीं है हमें, बड़ी जी बात सुनी मैंने, इसमें झूठ नहीं है, सौ वर्षों में खत्म हो जाए हिंदू, कोई नाम ना, ना रहे, क्योंकि हम दो हमारे दो, अब मरेंगे वो तो उसमें जाएंगे कि नहीं, अरे मरेंगे जरूर ही, पैदा होने में दो भी पैदा होने में संदेह है, मरने में तो सब मरेंगे, फिर नष्ट हो जाएगा आपका वंश, नष्ट हो जाएगा, कितना अनर्थ हो जाएगा, पर तो मानते नहीं, क्या ना मानते नहीं, सुनाते सुनते नहीं, उधर सोचते ही नहीं, सबसे निकृष्ट पैसा है उसको महत्व दे दिया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अब वे समझ नहीं सोचते, बुद्धि भ्रष्ट होगी क्या समझेंगे, बुद्धि ने साथ पढ़नी स्थिति, संगत शुभ जाते संगासन जाते कामात कामात क्रोध हो भी जाते, क्रोधात बुद्धि सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रसात बुद्धिनाश हो, बुद्धि ने साथ पढ़नी स्थिति। रुपया का बड़ा भारी महत्व कर दिया, बड़ा भारी है, क्या साधुओं में देखो, क्या गृहस्थों में देखो, क्या पंडितों में देखो, जहां जाओ भाई भगवत संबंधी बातों में भी पैसे की जरूरत है, सब जगह पैसे की आवश्यकता है। मेरे सज्जन सत्संग करने वाले कहते हैं कि वस्तुओं की आवश्यकता है, तो कि सत्संग में पंडाल बन जाएगा वस्तुओं से, एक लोहे का टुकड़ा है वो लेकर जाओ कोई पंडाल बन जाएगा, अच्छे सत्संग हमारी खास आदमी वो कहते हैं, पैसे बने क्या होता है, ये बैठी हुई बात है। मैं पैसे की निंदा नहीं करता हूँ, पैसा आपके काम कितना आता है, और वस्तु आपके काम कितना आती है, और आप जीते हैं किस बात पर जीते हैं, अन्न जल और वस्त्र और मकान, चार चीज बहुत आवश्यक जीते हो, वो जमीन और मकान बेचते रहे और पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब वो बुद्धि भ्रष्ट हुई, पैसों का महत्व जब गया, तो सबसे निकट से उनको ऊंचा समझ लिया, अब उनको कैसे आकर आएगी, नहीं आकर आ सकती, समझ नहीं सकते, निंदा सुन नहीं सकते। एक राजपूतों की सभा सुनी जिसमें आज से 70 वर्ष पहले की बात होगा, अंदाजन पूरा याद नहीं है सब मत, पर सेठ जी के पास आया था नहीं, जिस समय सेठ जी के पास नहीं आया, गाथा बजाता था, सुनाता था, व्याख्यान देता था, रात्रि में जागरण था, उसमें मैंने कहा ये राज वो मंस गाते हैं, मंस क्या चीज है, माँ बाप से शरीर बनता है, शरीर में हड्डी अंश बनता है पिता के अंश से, मांस बनता है माँ के अंश से, जो माँ के गर्भ में जब बालक आ जाता है उनका रुजू बंद हो जाता है, स्त्री धर्म उसमें होता नहीं, वो रस सबका सब उसके पत्ते के पालन में लगता है, जहां से रस गिरता है वो मैंने सड़क है सुश्रुत वेद आयुर्वेद मैंने देखे है, मैंने पढ़ाई नहीं की है पर पढ़ा हुआ देख लेता हूँ। उसमें कहा कि वो बच्चा गर्भ में आते ही ऊपर से जहाँ खून गिरता है उसमें तो आड़ लग जाती है और वो खून सभी बच्चे के निर्माण में बच्चे के बनाने में लग जाता है और उसके लगने से फिर दूध पैदा हो जाता है, उस रस से ही वो रस गिरता नहीं है स्त्रियों के, इसको आप लोग ज्यादा जानते हो, मैं जानता नहीं हूँ इतना, मैंने पुस्तकों में पढ़ा। अब वो मांस खाने में क्या है, वो मांस वो स्त्री का रज है, हमारी माँ है जन्म देने वाली, परंतु रजो दर्शन हो गया है वो स्त्री धर्म में है तो छू करके नमस्कार नहीं, दूर से नमस्कार करते हैं, सुबह तो कल्याण करते हैं कब्र से तो स्नान करें, उस रज से बड़ा हुआ मांस है कितना है बने? एक राजपूत बोले सभी अब बस को आगे बस को सभा में बोला हो एक मांस खाने वाला आदमी, मैंने कहा मांस चीज क्या है, वो रज है इकट्ठा हुआ हुआ दूरदर्शन होने मात्र से हमारी माता पूजनीय आदरणीय सब तरह से है, परंतु उसे रज गिरता है अभी उनको छूने लगी नहीं है, उस चीज से पड़ा हुआ मांस है वो खाते हो आप बुद्धि प्रसिद्ध क्या होगी, इस तरह से उन पैसों का इतना आदर करते हो बुद्धि प्रसिद्ध क्या होगा, कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, पैसों की बात नहीं है, पैसों की बात नहीं है, पैसा खर्च करो अच्छे से काम है उत्तम काम है, खर्च करो पैसा अच्छा काम करो, ये जो है दान है तप है आदि में दरिद्रों की सेवा है, अपाहिजों की सेवा है, बड़े पुरुषों की महापुरुषों की सेवा है, उन सेवा में खर्च करो उनका निर्वाह हो जाए, ब्राह्मणों की कन्या बड़ी बड़ी होगी 20-25-25 वर्ष की हो गई संबंध नहीं हो रहा है तो पैसा खर्च करो, तो ऐसे ब्राह्मण कन्या को कन्यादान कराओ जिससे कितना काम हो जाए, माँ बाप को कितना संतोष होगा, अरे आप इतना पैसा बहाते हो मकान बनाते हो फर्नीचर बनाते हो के लाते हो मोटर लाते हो, एक ब्याह के बीच में 3-4 लाख रुपया खर्च करते हो, 3-4 ज्यादा मैं थोड़ा कहता हूँ इनसे ज्यादा, और आतिशबाजी करते हो फूल बनाते हो फूल बंगला बनाते हो सब जगह फूल बिछा दिए ऐसा शादी में खर्च कर दिया, वही रुपया अगर गरीबों के लड़कियों का संबंध कर दो तो कितना काम आवे, बड़ियों की लड़कियां बड़ी बड़ी हो गई, लड़कियां बड़ी बड़ी हो गई 20-25-25 वर्ष 30-30 वर्ष की हो गई, कुंवारी छोरियां ब्याह होता है नहीं, माँ बाप के बड़ा भारी दुख है पर करे रहे क्या, लड़के वाले मांगते हैं रुपया लाओ रुपया दो, अब रुपया कहाँ से लावे, घर खर्चा कहाँ से लावे, सब चीजें महंगी होगी, अन्न महंगा हो गया, कपड़े महंगे हो गए, साग तरकारी महंगा हो गया, खाने पीने की चीज रोजाना चाहिए वो महंगी हो गई, पैदा होते है नहीं, नौकरी करके थोड़े पैसे मिलते हैं, 4-5 घर में आदमी है हमने कैसे पालन होता है, कहाँ से इतने रुपया लावे कन्यादान के लिए, लेने वाले को हत्यारे आदमियों को दया नहीं आती है, कितने हत्या कर रहे हैं, कन्या बुझाई घर में बैठी कुंवारी, ऐसी कई कन्याओं को मैं जानता हूँ, मेरे पास आए मैं क्या करूँ, गोरखपुर में था एक कायस्थ चढ़ने लगा, मेरे कन्या का संबंध नहीं होता, मन में आती है कि इसे ही बन जाऊं, इसे ही बन जाऊं तो बल मिल जाएगा सूर्य ने, तो क्या करूं मेरे संबंध नहीं हो रहा है, मैंने कहा भाई ज्यादा करे तू रोता एक मैं रहूंगा दो रहूंगा और क्या होगा, अरे बाबा जी साथ है नहीं हमारे पास कुछ पैसा कैसे लाऊं, मेरे पास आते हैं लोग समझते हैं कि बाबा जी वो लोग मानते पैसा मिलेगा, या वृंदावन की बात कुछ मिल जाए संदाई कर करने के लिए, मैं भैया मैं लेता देता नहीं हूँ, आज ही बात हुई आज ये जो काम मारा तुलसी दे दो, मैं देता हूँ ना देता हूँ, आप हाथ से तुलसी दे दो, मैं देऊ तो देऊ, मैं देता ही नहीं, देता क्या मैं देता नहीं हूँ, तो वे आए मांगने के लिए फिर अंदर सूखा लग रहा है कुछ नहीं, ये वृंदावन की बात है, तो सूखा लकड़ा कह कर उठ के चले गए। अब लूंगा इसे पैसा, मेरे देने की शौक नहीं है, लेने की भी शौक नहीं है, ना पैसा लेने की शौक है ना पैसा देने की शौक है, क्या करूं। मैं जब इतना निकृष्ट समझता हूँ, मैले से भी निकृष्ट समझता हूँ, पेशाब से धरती से भी कादे से भी निकृष्ट समझता हूँ, मैं पैसा लूंगा। चक्रधर जी का सही शांत हो गया। उन्होंने कहा था, एक आदमी ने कहा कि महाराज आप आशा दे आशा आशीर्वाद दे दो तो हम पैसा मिल जाए, कि मैं छूना ही पाप सुन जाऊं वो तेरे को दूंगा, तुम प्रेमी समझता है मेरा प्रेमी है तेरे को ऐसी मैली चीज दूंगा, मैं पैसा दूंगा। ये उत्तर दिया उन्होंने। बम्बई में गया तो पीछे मैंने कहा पैसे गाया मर रही है काल पड़ा हुआ है तो आप कुछ करो, तो मेरे को सम्मति दी कि धनी आदमी को इकट्ठा करो और इकट्ठा करके उनसे कहो और यहाँ दान की पेटी रख दो कि जिनसे गायों बस जाए मारवाड़ की धनी आदमी को धन मिल जाएगा। मैंने कहा मैं धन का महत्व बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, धर्म का और ईश्वर का महत्व बढ़ाने की उद्देश्य है मेरा। मैं ऐसा धन इकट्ठा करूंगा तो तुम ही सब कहोगे कि पैसों की जरूरत समझनी भी पड़ती है, पैसा तो बड़ा है ही, वो पहले आपके माना हुआ है, फिर उसी महान अन्याय को मैं बैठाऊंगा, मैं धनियों की गर्ज करूंगा, मैं पेटी रखूंगा, पैसा इकट्ठा करूंगा, मैं गायो मर रही थाना बता दूं करो तो करो। एक भाई ने बम्बई में एक भाई ने कहा कि हमारे 20 लाख एक रुपया लगाना है आप कठे लगा दो। मैं नहीं लगाता, तुम जाओ खुद गायों को देखो, भूखा मर देखो अपने हाथ के सामने अपने चराओ तो पता पड़ेगा रुपया देने से इतना पुण्य नहीं होता जितना प्रत्यक्ष गायों को चराओगे और आपके हृदय पर असर पड़ेगा, वो दान का असर नहीं पड़ेगा। दान देना भी अच्छा समझता हूँ, आप संग्रह करो इसकी अपेक्षा पुण्य में लगाया जाए तो बड़ी काम की चीज है। पैसों से पैसों का खर्चा बड़ा ऊंचा है, ऊंचे दर्जे चीज है, पैसा ऊंचे दर्जे की चीज नहीं है। फिर वो गया भाई, वो देखा गायों से गाँव में भटका, खर्च किया उसने, कि स्वामी जी आप ले लो आप किसी को कह दो, मैं नहीं तो लेता हूँ, मैं नहीं डराता हूँ किसी को भी डराऊंगा, आपको बहम यही होगा बाबू जी कुछ ले लेंगे, हमारे लेना है नहीं, करूँ क्या पैसों का, पैसों की जरूरत नहीं, रोटी मिलती है कपड़ा मिलता है पुस्तक मिलती है सवारी मिलती है मकान मिलता है, हमारे निर्वाह की चीजें मुफ्त में हमारे को मिलती है, लोग देते हैं। कलकत्ते जैसे शहर में मकान खाली पड़ा है किरायेदार को नहीं रखते और मेरी गर्ज करते हैं कि मकान में रहो, क्योंकि विश्वास है कि स्वामी जी इस बार हथियार नहीं करेंगे ये थाए रहेंगे, किराया मिलेगा हमारे से मिलना क्या है, कुछ नहीं मिलता, तो रोटी देते हैं और वे खुद खर्च करते हैं, किरायेदारों को नहीं रखते, पैसा दे 1000 रुपया देते हैं पर मकान गया हाथ से। ये आजकल का कानून बना हुआ जबरदस्ती जहां बैठ जाए वो कब्जा कर लो, बस मिल जाए वो कब्जा कर लो, सही ऐसा की हम सहायता करते हैं जो दे दो अपनी समझ दे, भूखा मर रहे हैं उधार रुपया नहीं मिलता, उधार जिनकी वे रक्षा करते हैं उन हरिजनों को 1000 रुपया नहीं मिलता, क्योंकि तुम रुपया लेते दो मत ना, अब नहीं दे, अब सजा देने वास्ते कौन बैठा है जो रुपया दे ही दे, उधार नहीं देते दे। दुख पा रहे कि सब जगह काम लगाओ ऊंचे ऊंचे दर्जे में इनको भर्ती करो, इनकी तजीवा करो, इनका उद्धार करो। काम करने वाले पुरुषों ने कहा है हम उनको सिखाते हैं मैत्रों के बालकों को समारोह के बालकों को तुम काम सीखो, वे सीखते नहीं क्योंकि बैठे बैठे रुपये मिलते हैं, क्यों सीखे, उनको काम दो, काम बिगड़ता हरेक हरेक विभाग में ऐसे न काम करने वाले न लायक हुए वो पोगे जो भर्ती उस काम में योग्य नहीं है, योग्यता ही नहीं है, और सहायता करते हैं, ये सहायता होगी पतन होगा, कितनी बड़ी बात है पतन की बात, सहायता करते हैं इनको ऊंचा उठाते हैं, रुपया दे दो इनको सुबह भर्ती कर दो। ब्राह्मण लड़कों को मैंने कहा तुम पढ़ाई करो, कि पढ़ाई हम नहीं कर सकते, हम पढ़ने में भर्ती नहीं हो सकते, हरिजनों के लिए मतमानों को मैत्रों के लिए सीट रिजर्व है, वो पढ़ने में भर्ती हो जाए, पढ़ते है नहीं वे पढ़ते भर्ती हो जाए, ब्राह्मण को नहीं मिलता, हमारे रामनारायण दत्त जी शास्त्री जो गीता प्रेस के मुख्य पंडित थे, उन्होंने ये बात कही कि मैं लड़का जरा भर्ती करता हूँ कि भर्ती ब्राह्मण के लिए भर्ती नहीं होता है, ये समारोह के लिए मैथों के लिए तो सीट खाली है स्कूल में, वो पढ़ना चाहते नहीं पढ़ना, ब्राह्मण चाहते वो ब्राह्मण को भर्ती नहीं करते। ये बीती हुई बात है, आपको बताता हूँ। अब इसका राज्य की क्या दशा होगी भगवान जाने, दशा बिगड़ रही है अभी भी। इतना कर्जा हो गया है हिंदुस्तान पर, हिंदुस्तान की बिक्री होता है जो कर्जा नहीं, उसमें इतना कर्जा हो गया है। क्यों 5 वर्ष होता हम रहते हैं, अब तो गुल सजा उड़ाओ खाओ कू पर हो जाएगा। कितनी अनर्थ की बात हो रही है, बड़े भारी अनर्थ की बात हो रही है। हम दो हमारे दो ध्यान देंगे सुनना इस बात को, इसकी व्याख्या बताता हूँ। हम दो हमारे दो, पहले जो बच्चे होते हैं वो स्त्री का तो पुरुष की तरफ, पुरुष की तरफ स्त्री की तरफ आकर्षण होता है, उससे ब्याह करते हैं। किसी जाति की स्त्री किसी जाति का पुरुष ब्याह करते आकर्षण से, आकर्षण काम मोहित होकर पैदा होगा वो बच्चा होता नालायक होगा। वो धर्म पूछ करके जो किया जाए संग उससे बच्चा धर्मात्मा होगा, काम मोहित करेंगे तो बच्चे नालायक होंगे। तो एक तो हम दो हमारे दो दोनों नालायक होंगे, प्रजा सभी नारायक हो जाएगी। अच्छा धर्मात्मा कितना जन्मेगा उसमें, अच्छे आदमी कैसे जन्मेंगे, काम मोहित होकर संग करे उसे बच्चा जन्मेगा तो वैसे ही नारायक जन्मेगा। और पहले होता है आकर्षण से तो उसे बच्चे जन्मेंगे तो वो किस ढंग के बालक होंगे, और उससे समाज किस ढंग का बढ़ेगा, और क्या समाज की दशा होगी, नहीं करते सुनते नहीं, कहते हैं उसे सुनते नहीं, डरते हैं लोग। मैं व्याख्यान देता हूँ ना, आप जो सज्जन डरते हैं कि स्वामी जी बोलते हैं स्वामी जी को पकड़ लेंगे। हमारे मित्र थे हरिप्रसाद जी ब्राह्मण देवता स्नान हो गए, वो कहते हैं स्वामी जी आप कहते हो आपको कैद कर देंगे लोग, सरकार के विरुद्ध बोलते हो आप, हमारी सरकार से बैर है ही नहीं, हम बैर थोड़ी करते, हमारे मन में बैर है ही नहीं, हमारे बैर है उनके कर्तव्यों से, उनसे बैर नहीं है मेरा, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी उससे हमारा बैर है, हमारे उन पुरुषों से बैर नहीं है। क्या कर रहे हो आप, कितना अनर्थ कर रहे हो, समाज किस तरफ जाएगा, भोग की आसक्ति से ब्याह करते हो, अब उससे बच्चे जन्मेंगे वो बच्चे महान नारायक होंगे, धर्मात्मा हो जाएंगे। हम जो हमारे दो, मैं बातें समझाऊं आप समझ में आती है नहीं, ये तो भगवान जाने भाई, मेरे संदेह होता है कि आप शायद ही समझते होंगे। दशा ये हमारे देश की हो रही है, इतने पर भी मेरा कहना कोई सुनाई नहीं करता है, सुनाई करती है। बहन माताओं में कई है जिनके पश्चाताप होता है, रोती है। एक डॉक्टर ने मेरे को कहा कि ऐसा अगर वो नसबंदी केवल करी है तो स्त्री का पैसा खुल सकती है, संतान हो सकता है। उन्होंने कहा मैंने करके देखा संतान हुआ है उसके, पर बच्चा दानी निकाल दी, उसका कोई उपाय नहीं, उसका कोई उपाय नहीं। ऐसे ऐसे अनर्थ कर रहे हैं, मेरी बातें सुनने से डॉक्टर लोग भी ख्याल करते हैं, लोग भी ख्याल करते हैं, बहनों माताओं को भी ख्याल होता है, रोती है कि हमें पता नहीं था, हम तो समझते नहीं क्या बात हुई, अब समझो मत सुन दशा ये है तुम्हारी, अब दूसरों को समझो, बहन बेटी आपकी है उनको समझाओ, बहू है बहन है बेटी है जगह उनको समझाओ, आप माँ हो, माँ माँ सबसे ऊंचा दर्जा माँ है, कुशलता माँ कह रही है। पति पिता होते हुए भी पति से अपने को बड़ा कहने में शर्म आती है, मैं कौशल्या ने कहा है तो दिन जाओ जान बड़ी माता माँ को बड़ा सुन देता हूँ, अपने मुख से कह देना मैं राम जी बन में न जाए, बात से प्रेम है हमारा लाला हमारा दुख न पावे किसी तरह से ही, अपने को बड़ा ही स्वीकार कर लेती है, न करने लायक बात कह देती है, कितनी हिम्मत करी है। तो दिन जाओ जान बड़ी माता माँ का दर्जा ऊंचा, मेरी बात मानो बेटा, जंगल में मत जाओ बदमाश में मत जाओ, वास्तविक प्रेम है स्नेह रहा, बूढ़े हो जाए, बड़े हो जाए, लड़के जिनके पास सात लड़के हो गए, ऐसा आदमी सोता है, बूढ़ी माँ लाठी की जोर निकलती है, कपड़ा उठा देगी। अब कोई बच्चा हैगा ये कि बच्चे हो गए, पर माँ का वो इसलिए लड़का जीत कर लाए राम जी।